नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित सदस्य लेंगे शपथ। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज से 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 13 विधेयक पारित होंगे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, दो दिन से अधिक समय तक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर छोड़ देने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पूर्वी क्षेत्र महिला रैंकिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बेगूसराय की शालिनी कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय इस सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित 243 सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। एक रिपोर्ट।
सत्र के पहले दिन ही विधानसभा के नए अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। इसके बाद कल अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 3 दिसंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का उत्तर होगा। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किए जाएंगे। इसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारीख।
इधर सत्र के दौरान विधानसभा भवन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार ने विधानसभा के आसपास किसी तरह के प्रदर्शन, जुलूस और नारेबाजी पर रोक लगा दी है। 18वीं बिहार विधानसभा की कार्यवाही में इस बार नई पहल की जा रही है। इस सत्र से सदन को पूरी तरह पेपरलेस बनाया गया है। इसके लिए विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। इसके माध्यम से वे प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष भी टैबलेट के माध्यम से ही सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सत्र के दौरान 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। एक रिपोर्ट।
इस शीतकालीन सत्र में 13 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। इनमें नेशनल हाईवे संशोधन विधेयक 2025, एटॉमिक एनर्जी विधेयक, कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक, बीमा कानून संशोधन विधेयक और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक 2025 शामिल है। इसके अलावा 2025-26 के लिए पहले पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। लोकसभा में पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रदेश में सड़क किनारे लापरवाही से चार पहिया वाहनों को खड़ा करके छोड़ देने वाले वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से श्री कुमार ने अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार सड़क किनारे दो दिन या उससे अधिक समय तक चार पहिया वाहन के खड़ा रहने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने आज से उपभोक्ताओं के लिए अपनी सेवाओं के नियमों में बदलाव किए हैं। रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग में बदलाव किया है। आज से टिकट बुक करते समय ओटीपी से ही कुछ विशेष ट्रेनों में टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में आज से यह व्यवस्था लागू हो गई है। बुकिंग के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट जारी होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने आज से एटीएम के निकासी शुल्क में वृद्धि कर दी है। एसबीआई ने कहा है कि वेतन खाता धारकों के लिए प्रति माह केवल 10 एटीएम लेनदेन मुफ्त होंगे। इसके बाद 23 रुपए प्रति लेनदेन लगेंगे, जबकि गैर वित्तीय लेनदेन पर 11 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। नए नियम के अनुसार अन्य बचत खाता धारकों को 5 मुफ्त लेनदेन दिए गए हैं। इसके बाद सभी निकासी पर 23 रुपए देने होंगे। आज गीता जयंती मनाई जा रही है। यह दिन उस पल की याद दिलाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष से भी पहले कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को भगवद गीता का कालजयी उपदेश दिया था। गीता जयंती भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए सार्वभौमिक ज्ञान की याद दिलाता है जो लाखों लोगों को उनके आध्यात्मिक और दैनिक जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। कल आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भर के लोग गीता से प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप और मध्य एशिया सहित दुनिया भर के कई देशों के लोगों ने हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया।
कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पूर्वी चंपारण जिले में पिपरा कोठी गोपालगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक ट्रक की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। वहीं अरवल जिले के मेहंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहसा मैनपुरा मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। इधर पटना जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरारी गुमटी के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बेटा थाना क्षेत्र के बिशनपुरा के निवासी थे। आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। यह दिन लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और HIV पीड़ित लोगों के साथ खड़े होने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम उपचार देखभाल के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं प्रदेश में भी एड्स के प्रति जागरूकता के लिए आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू किए गए GST बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। इस श्रृंखला में पेश है देश के कपड़ा क्षेत्र को मजबूत बनाने में GST सुधारों के प्रभावों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
नई पीढ़ी के GST सुधारों के तहत कपड़ा उद्योग में किए गए कर कटौती ने आम आदमी पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम कर दिया है। मानव निर्मित रेशों और मानव निर्मित धागों पर GST दरों को घटाकर 5% कर दिया गया है। कपड़ा क्षेत्र में इस कर कटौती का उद्देश्य लागत कम करना, मांग बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। वहीं रेडीमेड कपड़े जिनकी कीमत 2500 रुपए तक है उन पर अब 5% कर लगाया जा रहा है। ये सुधार वैश्विक बाजारों में भारतीय कपड़ों की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ा रहे हैं और भारत को एक वैश्विक कपड़ा उद्योग के रूप में उभरने में सहायक बन रहे हैं। दृष्टि और आरजू के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में कल से 20वें अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के दौरान पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे 27 देशों के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु त्रिपिटक का संयुक्त पाठ करेंगे। आयोजन 12 दिसंबर तक चलेगा। प्रदेश के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हवा के प्रभाव बढ़ने से न्यूनतम तापमान में और कमी होने की संभावना है। वहीं कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा भी छाया रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोलकाता में संपन्न पूर्वी क्षेत्र महिला रैंकिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बेगूसराय की शालिनी कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। शालिनी ने 86 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच स्पर्धा में 80 किलो और क्लीन एंड जर्क में 104 किलोग्राम सहित 184 किलोग्राम भार उठाकर जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। भागलपुर में आयोजित 14वीं बिहार इंटर स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में पटना की टीम ने ओवरऑल खिताब पर कब्जा जमाया। बालक वर्ग अंडर 11 का खिताब पटना के देवांश केसरी ने जबकि अंडर 15 का खिताब अव्यय शर्मा ने जीता है। वहीं बालिका वर्ग में अंकिता राज, अभिश्री दीपू और श्रेय राज चैंपियन बनी हैं। 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हरा दिया। रांची में खेले गए मुकाबले में 350 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम आखिरी ओवर में 332 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से विराट कोहली ने 120 गेंदों में 135 रन की शानदार पारी खेली। इस मैच में 52वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के साथ ही कोहली एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जीत के साथ भारत ने श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के माधोपुर ग्रीन प्लांट के पास पुलिस ने 20 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ चरस के साथ एक महिला सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बेतिया सदर के SDPO विवेक दीप ने बताया कि जब्त चरस का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक है। राजधानी पटना में आज से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के लिए 9 टीमों का गठन किया गया है। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि शहर की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही अवैध व्यवसायिक गतिविधि करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है 18वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक आज लेंगे शपथ। दैनिक जागरण लिखता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनपुर मेले का किया दौरा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है कॉलेजों में जिन विषयों में ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनमें अब PG कोर्स भी चलेंगे। अखबार लिखता है प्राध्यापकों के पदों पर बहाली भी। प्रभात खबर का शीर्षक है 900 करोड़ रुपए से चमकेंगे पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा और बक्सर स्टेशन। आज अखबार लिखता है सूबे के सभी संस्कृत स्कूलों में गीता जयंती अनिवार्य। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी पर नया केस दर्ज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र के पहले दिन सभी नवनिर्वाचित सदस्य लेंगे शपथ। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज से 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 13 विधेयक पारित होंगे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा 2 दिन से अधिक समय तक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर छोड़ देने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और पूर्वी क्षेत्र महिला रैंकिंग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बेगूसराय की शालिनी कुमारी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।